शांति। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। शांति और सद्भाव के लिए सशक्त मीडिया। और ये शांति और सद्भाव, वरन कहूं वैश्विक शांति सद्भाव, जीवन के लिए आवश्यक मूल्य है। जहां शांति है, जहां सद्भाव है, वहीं प्रेम है, वहीं खुशी है, सहजता है। आज समाज को कहे, देश को कहे, या पूरे विश्व की बात करें, इसी की आवश्यकता है। जहां प्यार है, वहीं सच्चा विश्वास है। बाह्य विकास के साथ साथ चाहिए, जिसकी बाह्य विकास की तो हम बहुत बात भी करते हैं और देश प्रगति करता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ चाहिए अंतर मन व्यक्तिगत, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। भीतर के विकास की आवश्यकता है, अपने सच्चे मूल्यों के विकास की आवश्यकता है। और इसी बात को पूरा करने के लिए जरूरत है ऐसे मजबूत कंधों की, जो श्रेष्ठ मूल्यों के द्वारा, श्रेष्ठ विचारों के द्वारा सबको दिशा दे सके। और यही सम्मान भरी जिंदगी जीना सबको सिखा दे। मनुष्य जी तो रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कैसे जी रहा है, किन स्थितियों से गुजर रहा है। आवश्यकता है हर व्यक्ति अपनी सम्मान की जिंदगी जिए, प्रेम की जिंदगी जिए। और इसके लिए ये कंधे, मजबूत कंधे, मैं समझती हूँ आपके अलावा कोई और नहीं। अपने लिए ही ताली बजाइए, आपके अलावा और कौन जो दिशा दे, आपके अलावा और कौन जो सहारा बन सके, आपके अलावा और कौन जो हर जीवन में खुशी के बीज डाल सके। तो इसीलिए परमात्मा की निगाह भी आप सब पर है, और उसी के कारण इस परमात्मा के घर में, परमात्मा के आमंत्रण पर आप सभी यहाँ आए हैं। आपका स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ये परमात्म भूमि कहूं, ये वो भूमि है जो अंदर में सुखद एहसास देती है, जैसे बालक अपने पिता के गोद में आकर शांति और खुशी और प्यार की अनुभूति करता है। मैं समझते हूँ शांति वन की इस भूमि ने, परमात्म भूमि ने आपके तन मन का थकान हर लिया होगा। सही है, सही है। फ्रेश है, तरोताजा है, खुश है, प्रसन्न है। तो अपने लिए पुनः ताली बजाइए। तो आइए इस महत्वपूर्ण सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम मैं मंच सज्जा को पूरा करूं, उससे भी पूर्व हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय राजयोगी भ्राता निर्वैर भाई जी, जो कि संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं, और कहूं उनके लिए कि वो तो खुशनुमा जीवन क्या होता है इसकी कला सिखाते हैं, खुद भी प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता से सबसे मिलते हैं, और यही प्रसन्नता को वो सदा बांटते हैं। जीवन सरल, सहज, स्वाभाविक वो जीते हैं, सबको सम्मान देना और देते हैं, ये उनकी जीवन की विशेषता है। आज वो अस्वस्थ होने के कारण हमारे मध्य नहीं आ पा रहे हैं, और उनकी तरफ से वो वीडियो मैसेज हमें देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी का वीडियो मैसेज सुनेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, आपसे सुनते हैं।
ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा के अति लाडले अति प्यारे 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 भाइयों व प्यारी प्यारी बहनों, जो भी मीडिया से संबंधित हैं, चाहे ऑर्गेनाइजर्स, हमारे चेयरपर्सन भ्राता करुणाकरण शेट्टी जी और आपके साथी, चाहे मधुबन के कोऑर्डिनेटर शांतनु भाई जी और साथ साथ दिल्ली, बॉम्बे, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सब तरफ के सेवा के निमित्त कोऑर्डिनेटर्स और मीडिया विंग के सभी मेंबर्स, जो इस कॉन्फ्रेंस के निमित्त सेवाधारी के रूप में पार्ट बजा रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत दिल की दुआएं व मुबारक हो। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए खास भारत तथा विदेश से भी आने वाले मीडिया पर्सन्स, आप सब महान भाग्यशाली हैं, क्योंकि वर्तमान समय भारत का माहौल बहुत सुंदर है। विश्व के कोने कोने से महान हस्तियां, G20 के मेंबर्स, वो सब पधार रहे हैं और उनके साथ साथ इन दिनों में भारत में त्योहारों की सीजन भी है। रक्षाबंधन पूरा हुआ, उसके बाद ये जन्माष्टमी का टाइम आ गया, तो सभी उस एक खुशी के मूड में है। नॉर्मली कहते हैं कि पॉजिटिव न्यूज इज नो न्यूज, नेगेटिव न्यूज को ही न्यूज मानते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे प्रिय मीडिया में पार्ट बजाने वाले सीनियर व जूनियर सभी भाइयों और बहनों को मैं आपसे नम्र निवेदन करके यही पूछना चाहता हूं कि आप विश्व को क्या देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं या दुख देना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं या नाराज करना चाहते हैं। तो आप, मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप कुछ अपने रिपोर्टिंग के ढंग को अगर थोड़ा मोड़ दे दें, अगर हो सकता है तो, इस ढंग से दे कि नेगेटिव न्यूज भी पढ़ते हुए मनुष्य कुछ अच्छी बात सीख सके और अपने आप में अच्छाई को ला सके। खुदा ने हम सब को इस धरा पर अच्छा पाठ बजाने के लिए भेजा और हरेक आत्मा का जो पाठ है वो कोई सदा नेगेटिव नहीं रहा है। ये एक परम सत्य है कि कोई भी आत्मा इस धरा पर जब जन्म लेती है, चाहे सत्युग में ले चाहे बाद में ले, तो पहले उनका जितना समय का पार्ट है इस संसार के अंदर, उसमें आधा शुरुआत का पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, वो शुभ है, और फिर उसके बाद पांच विकारों रूपी माया का ग्रहण लगता है। वो भी एकदम से नहीं लगता है, वो भी धीरे 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 धीरे। इसलिए आप देखेंगे कि अभी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, तो इस समय भी हमारे आदरणीय बहन जो प्रेसिडेंट के रूप में पार्ट बजा रही है, और इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह का वो पार्ट बजा रहे हैं, आप देखिए उन आत्माओं में सात्विकता कितनी है, उन आत्माओं में आत्मीयता कितनी है, उन आत्माओं में भ्रातृभाव कितना है, उन आत्माओं में देशभक्ति कितनी है। हर तरह से देखेंगे कि जो उनके अंदर पॉजिटिविटी है, ये अगर हमारे भारत के सर्व भाई बहनों के अंदर आ जाए, भारतवासियों के अंदर आ जाए, चाहे वो भारत में है चाहे विदेश में है, तो सारे विश्व को एक नई राह दिखा सकते हैं। मीडिया का भाव क्या है? एक तो सत्यता का पूरा सार सब तक पहुंचाना, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी सच्चाई को सब तक पहुंचाना, और अगर उसके साथ में एक अपना ध्येय परिवर्तन कर ले कि इसके साथ साथ इस भारत को व इस विश्व को हमें नई राह भी दिखानी है, इनको फिर से सात्विकता की तरफ ले जाना है। हमारे जो भी साइंस के द्वारा एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिसमें भारतवासी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, केवल उस तक सीमित न रहे, बल्कि हम सारे विश्व को एक नई राह दिखाने के लिए, नया युग लाने के लिए, क्योंकि आखिर भी ये कलयुग है, सदा कलयुग नहीं रहना है। न सत्ययुग सदा रहा, न त्रेता युग सदा रहा, न द्वापर युग सदा रहा और न कलयुग सदा रहेगा। तो कलयुग सदा न रहे उसके लिए हम आप सभी को सतो प्रधान सोच मन में लाना जरूरी है। फिर से सात्विकता का झंडा गाड़ना जरूरी है और सारे विश्व को नई राह दिखाना जरूरी है। तो आप मीडिया पर्सन्स, मैं कहूंगा परमपिता परमात्मा के संदेश वाहक बन करके उसकी जो श्रीमत है उस श्रीमत को स्वयं भी धारण करें, अपने जीवन को भी पावन पावन बनाए और दूसरों को भी पावन बनने की राह दिखाएं। आपके इस कॉन्फ्रेंस का ऐसा संदेश सबके पास जाए, यही मेरी शुभ भावना है। आप सबको मधुबन में आने का विशेष क्या कहूँ, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और इसके साथ साथ जिस सेवा के निमित्त आप हैं उसके लिए भी बधाई हो और भारत तथा विश्व को एक नई राह दिखाने का जो आपका ध्येय है उसके लिए भी आपको कोटि कोटि बधाई हो। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी को, जिन्होंने हमें इतना सुंदर संदेश दिया कि आप परमात्मा के संदेश वाहक हैं और आपको उसका कार्य करना है, स्वयं भी पावन बन पावनता की ओर ले चलना है। हम आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और मंच सज्जा की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं मंच सज्जा के लिए आमंत्रण दे रही हूँ। हमारे बीच विराजित आदरणीय बहन सरला जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आदरणीय दीदी निर्मला दीदी जी एवं प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार जी, बहन रंजन जी, आदरणीय भाई करुणा जी, आत्म प्रकाश जी एवं शांतनु भाई जी, आप सब मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आमंत्रण दे रही हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि हर चेहरे पर खुशी, हृदय में प्यार बांटना है तुमको, ये प्रभु का प्यार बांटना है तुमको। तुम हो शांति के दूत इस जगत के वास्ते, हे मानव पहचानो अपने सद जीवन के रास्ते। आमंत्रण है सबको अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम सभी तालियों के द्वारा आपका सम्मान अभिनंदन करते हैं। और अब मैं शुरुआत करूं उसके लिए कहूंगी शांति का दाता, सद्ज्ञान का दाता, वो परम पिता परमेश्वर जिसके लिए प्रार्थना में भी गाया जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो परमात्मा का आह्वान किए बिना हर शांति की बात करना अधूरी है। तो आइए कुछ पलों के लिए शांति से बैठेंगे, शांति में बैठेंगे, प्रभु का आह्वान करेंगे और थोड़ा सा सीधा होकर बैठेंगे प्रभु स्मृति के लिए। चलते हैं कुछ पलों के लिए शांति की ओर। ये प्रभु स्मृति शांति की ऊर्जा से स्वयं को भरपूर करने के पश्चात मैं आमंत्रण देना चाहूंगी ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि वह पुष्पों और बैजेस के द्वारा सभी का सम्मान करेंगे और हम सब ये सम्मान सिर्फ मंच का ही नहीं लेकिन हम सब का सम्मान है तो हम सब तालियों के माध्यम से अपना भी और सबका सम्मान करते रहें। ये तालियां इतनी हो जो हम सब में ऊर्जा उमंग उत्साह भर जाए। तालियां बजती रहे तो बहुत सुंदर लगता है। ये मीडिया कॉन्फ्रेंस अगर मैं इसकी बात करूं आप सबसे ये ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है, आप खुद भी समझ रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण और शुभ समय पर हो रही है, जो कि आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी ने भी थोड़ा सा टच किया अपनी वार्ता बात कहते हुए कि जब अलग अलग खेमों में दुनिया बढ़ चुकी है एक तरफ और राष्ट्र अध्यक्ष दुनिया के दो दिन की भारत की मेजबानी कहूँ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर मंथन करने पर पहुंचे हैं। हम उस दौर के बीच में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब एक तरफ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर और वैश्विक चुनौतियों पर निपटने का मंथन होगा और ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इन दो दिनों में होने वाले मंथन से जो निकलने वाला अमृत होगा, क्या निकलेगा वो हम सब देखेंगे, पर निकलने वाले अमृत से मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि शांति का संदेश ये सबको देने की तैयारी की गई है कि सबको शांति का संदेश मिले और आज इस शिखर में जो मंथन होगा वो एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर मंथन होने जा रहा है और ये मंथन जरूरी है। आप सोचते हैं ये जरूरी है क्योंकि दुनिया के देश स्वयं जरूरत महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ तनाव है, चारों तरफ संघर्ष है, चारों तरफ आपसी मतभेद है, नफरत की भावनाएं बढ़ गई हैं और ये समय खतरे की घंटी का हो गया है। अगर साफ शब्दों में कहूं, रशिया और यूक्रेन, हम सब थर्ड वर्ल्ड वॉर के वर्ष पर आके खड़े हो चुके हैं, तो ऐसे में शांति और सद्भाव का संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर की स्थिति बदहाल है। शायद अतिशयोक्ति नहीं है इस शब्द को यूज करने में कि अंदर की स्थिति हम सब की खराब है, बदहाल है, तो चाहिए शांति और प्रेम का संदेश, और इसकी बजाय हमारे अंदर सबके अंदर तनाव है, दर्द है, नेगेटिव इमोशन एनर्जी है, तो चलिए आज वो संदेश हम अपने यहाँ से भी कि हमारे यहाँ पॉजिटिविटी, हमारे यहाँ से प्यार और खुशी का संदेश लेकर के जाए, और यही मीडिया राहत का कार्य मानवता को दे सकता है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रण दे रही हूँ वेलकम डांस के लिए, नृत्य के लिए, कल्चरल ग्रुप जो मुंबई से घाट गोपर से आया है, और उनके शब्द बड़े मीठे हैं जो राहत देने का कार्य कर रहे हैं। सुहानी ये हवा, सुहाना ये मौसम, तो आइए हम देखते हैं ये अभिनंदन वेलकम का ये नृत्य कुमारियों के द्वारा जो मुंबई से पधारी हैं।
स्वागतम 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 स्वागतम
कुमारी विनीता और कुमारी यशोदा का बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई घाट के ऊपर से आप पधारे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रण देना चाहूंगी, क्योंकि स्वागत सिर्फ नृत्य के माध्यम से ही नहीं, लेकिन स्वागत शब्दों के द्वारा भी अंदर की गहराइयों को छू लेता है, और उसके लिए आमंत्रण देना चाहूंगी आदरणीय बहन सरला जी को, जो कि मीडिया की नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ब्रह्मा कुमारी की मीडिया विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर, और आपने पब्लिक रिलेशंस और एचआरडी मैनेजर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वहां पर भी कार्यरत रही हैं। आप बीएचईएल मैगजीन भेल मैगजीन की एडिटर भी रही हैं 10 वर्षों से अधिक के रूप में, और इस समय आप नेशनल प्रेसिडेंट ग्लोबल फोरम फॉर पब्लिक रिलेशन, अ फोरम फॉर्म फॉर स्पिरिचुअल सपोर्ट टू पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन। मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ कि आप आए और शब्दों के माध्यम से हमारे आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का अभिनंदन करें। आदरणीय बहन सरला जी, ओम शांति।
सर्वप्रथम मैं आमंत्रण करना चाहती हूँ इस पूरे विश्व को चलाने वाले विश्व के रचयिता देव देव महादेव परमपिता परमात्मा को इस सभा में उपस्थित होने के लिए दिल से इनवाइट करती हूँ। एक कुछ सेकंड आप भी उनकी सटल उपस्थिति को पहचानिए, अनुभव कीजिए। जरूर आपको अनुभव होगा कि आपके बीच में सचमुच परमपिता परमात्मा शिव बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आमंत्रित करती हूँ पिता ब्रह्मा को, और मोस्ट रिस्पेक्टेड एमएलए भाई जी कोली जी, आत्म प्रकाश भाई जी वाइस चेयरपर्सन मीडिया विंग, डॉक्टर निर्मला बहन जी जॉइंट एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आदरणीय करुणा भाई जी चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमारीज मीडिया, भाई जी संजय द्विवेदी जी, प्यारी बहन रंजना जी, प्यारे भाई शांतनु जी, चंद्रकला बहन जी, एंड ऑल माय वेरी डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स who have come from different parts of the country to gain something here, आपको दिल से स्वागत करती हूँ। This invitation or this welcome or आमंत्रण कुछ एक व्यक्ति का नहीं है, इंस्टीट्यूशन का नहीं है, मगर स्वयं भगवान के इनविटेशन पर आप यहाँ पहुंच चुके हैं। भगवान ने इतने सारी दुनिया में करीब 800 करोड़ ऑफ जनता है, उसमें से आपको हरेक को चुन चुन के, गिन गिन के यहाँ लाके आमंत्रित करके यहाँ लाया हुआ है। भगवान को मैं धन्यवाद देती हूँ। दिस इज अ सेलेक्शन ऑफ गॉड एंड यू हैव कम हियर विथ हिज इन्विटेशन बिकॉज गॉड हैज ए ग्रेट प्लान फॉर ए न्यू वर्ल्ड एंड दैट प्लान ही रिपोज्ड हिज कॉन्फिडेंस इन सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल एंड वो पीपल में, वो जनता में आप मुख्य थे, मुख्य है मीडिया के परिवार। भगवान को मदद करने में आपका जिम्मेवारी बहुत बहुत आगे है, इसलिए आपको भगवान चुन चुन के बुलाया है। तो यहाँ आए हैं, इसमें आपके फायदा बहुत है। पहले तो यहाँ आपको मिलती है दिव्य ज्ञान, सच्ची ज्ञान, क्योंकि मैं जानती हूँ मीडिया वाले, अगर हर व्यक्ति को दो अंक होती है, मीडिया मेरे भाई बहनों को हजारों अंकों से ये दुनिया को देखते हैं। अभी भगवान आपको दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु देते हैं, उस चक्षु से आप दुनिया को देखें तो आप भगवान के मददगार बन के इस दुनिया को परिवर्तन करने में उनका बहुत बहुत लाभ दे सकते हैं भगवान को। और दूसरी, यहाँ आने के बाद आपकी बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि की कपाट खोलता है भगवान, और दिव्य बुद्धि से आप हर चीज को देखें तो आपको निर्णय करने की शक्ति और कई अष्ट शक्तियां आपके पास रहती ही रहती हैं। और इसके साथ यहाँ इस संस्था में मीडिया विंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विंग्स ऑफ ऑल द 22 विंग्स दैट आर बीइंग ऑपरेटेड हियर। उसमें मीडिया विंग का ऑब्जेक्टिव है टू इंस्पायर ऑल द मीडिया प्रोफेशनल्स टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग पीपल हैप्पी एंड पीसफुल। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच वी आर स्टैंडिंग फॉर। द सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव of our media wing establishment is to encourage all my dear brothers and sisters who are working in media and all the allied professionals, professional profession, to contribute their best towards enrichment, empowerment of the society and making each and every individual on this earth to be happy and peaceful. That is your main responsibility and contribution that we wanted you to aim for. At the same time, the world is going through, all of you know, a very sensitive phase of destructive phase. In this destructive field, media people have to be more courageous, more powerful in discharging their function. Unless you are powerful, unless you are extremely positive and high level thinking towards the society, you would not be able to contribute the way you want to furnish your profession. In this direction, media wing of Brahma Kumaris, whatever action we perform or whatever conferences or whatever sessions we conduct here, we work for it and try to contribute at this level to make you more powerful and to make you more discharge your profession truly to make the society a wonderful society, like a world, like Nibir Bhaiji keh rahe the. We are just shifting this world. We are just in the process of a transformation and have a very smooth shift from this destructive and very unpleasant world to a very pleasant and swargam, like heaven-like world in the near future. And one more point I would like to add here. Harek jo itni sankhya mein aap yahan pathare hai, you know, that you are having, you have received a subtle passport to have an entry into that world, because you are indirectly or directly helping the Supreme Almighty Authority in transforming this world into a new world. Therefore, you are having a direct passport to enter into that very, very pleasant and very swargam or paradise in the near future. So I welcome each and every one of you very heartily for this wonderful 3-day national media conference. And I wish all of you, on behalf of all my seniors who have a great desire on these platforms, many of our Purvaj, they have shared that, you know, the world, they have contributed to their best. They made their life like a laboratory and demonstrated all the culture. They just, Bhagwan ki jo gun hai, Bhagwan ki jo khubi hai, unme utar ke yahan ek example banke raha hai hamare didiya aur dadiya. To unko hum remember karte hue, unke aashirwad aapko pahunchate hue, unki jo ummeed hai aap you would definitely fulfill, us bhavna se aap sabko fir ek bar main welcome karti hoon, aamantran karti hoon, invite karti hoon is bahut 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 powerful conference mein. I wish all of you and all your family members a great life ahead with peace and prosperity. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया बहन शैला जी. शांति का संदेश स्वागत के साथ आपने दिया, शांति की कामना परिवार के लिए भी की कि परिवार भी सुखद रूप से सदा रहे. और साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, आप भगवान के मददगार हैं, शांति के दूत हैं, आपका कार्य और जिम्मेवारी का एहसास भी दिलाया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रण देने जा रही हूँ प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को, और मैं मंच पे आसीन हमारे विद्वजनों को आगे सेवा के लिए कहूँ, उद्बोधन के लिए कहूँ, बुलाऊं, उससे पूर्व एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये कि हम गागर में सागर को भरेंगे, समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए बढ़ेंगे. कहीं ऐसा महसूस हुआ कि समय की सीमा हो चुकी है तो मुझे पहले से ही आप क्षमा कर देंगे कि मैं आपको एक घंटी सूचना के माध्यम से दूं कि समय हो गया है, और उसके बाद 1-2 मिनट में आप इसको वाइंड अप कर दें. और अब मैं पुनः आमंत्रण दे रही हूँ संजय द्विवेदी जी को, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जन संचार विभाग में प्रोफेसर है, और आप नई दिल्ली के IIMC के महानिदेशक भी रह चुके हैं. आपका 1.5 दशक से ऊपर पत्रकारिता का करियर, आपने दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवज्योति आदि में कार्य किया है, और आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जितना कहूँ उतना कम है। अब इतना ही, एक ही शब्द में, एक ही लाइन में आपको आह्वान कर रही हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। गरीबी, हिंसा, दुखों से आंखों में नमी है। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं। गरीबी, हिंसा, दुखों से आंखों में नमी है। जड़ में कारण देखो तो मूल्यों की कमी है। जड़ में कारण देखो तो मूल्यों की कमी है। छोड़ कुवृतियां, छोड़ कुवृतियों के प्याले अमृत का करे रसपान। आओ स्वर्ग सी धरती हमारी, सुखी हो हर इंसान। इसी मंगल कामना, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपको मंच दे रही हूँ।
ओम शांति। सर्वात्माओं के पिता शिव परमात्मा की उपस्थिति को यहां पर महसूस करते हुए, उनके श्रीमत के विश्वासी जनों के बीच आकर मैं स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा हूं। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंच पर विराजित डॉक्टर परमादरणीय बीके निर्मला जी, आदरणीय भाई बीके करुणा जी, जिनके मार्गदर्शन में मीडिया की समस्त गतिविधियां चलती हैं, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय बीके आत्मप्रकाश भाई जी, बहन बीके सरला जी, जिनका बड़ा सुंदर उद्बोधन हमें भी प्राप्त हुआ, मीडिया गुरुओं में श्रेष्ठ, जिनकी शिक्षा से, जिनकी प्रेरणा से देश भर में मीडिया विद्यार्थी आज शिखर पदों पर कार्यरत हैं। इंदौर से पधारे कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार जी, बहन बीके रंजन जी, भाई बीके शांतनु जी, जो इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हैं, और कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन करने वाली आदरणीय बीके चंद्रकला जी। दिल्ली में एक G20 चल रहा है और माउंट आबू में मीडिया का G20 चल रहा है। ये बाबा का ही आदेश और आशीर्वाद है कि दिल्ली से लेकर आबू तक समुद्र मंथन हो रहा है, विचार मंथन हो रहा है, एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए, बेहतर दुनिया बनाने के लिए, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां पर सुख है, आनंद है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, और सब जो है लक्ष्मी नारायण बनने की यात्रा पर अग्रसर है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि एक आध्यात्मिक संगठन मीडिया के इतने सारे लोगों को बुलाकर हर साल क्या करता है, और साल में दो दो बार बुलाता है, एक बार से काम चलता नहीं है, कि छह महीने में कुछ विस्मरण हो जाए तो फिर से स्मरण करा दे। उनका स्वार्थ क्या है? प्रजापिता ईश्वर विश्वविद्यालय तो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए लोग हैं, इनको मीडिया से क्या लेना देना? क्या चाहते हैं? खबरें छपवाना चाहते हैं? अपना नाम देखना चाहते हैं मीडिया में? इनका आकर्षण क्या है? ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, कोई भी नया मीडिया कर्मी ऐसा सोच सकता है कि हमारी यात्रा क्या, हम चाहते क्या? और अकेले मीडिया नहीं, आप देख रहे हैं 20 अलग अलग क्षेत्रों में प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय काम कर रहा है। यहां पर भी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, महिलाओं की अलग चल रही है, चिकित्सकों की ज्ञान सरोवर में चल रही है, पॉलिटिशियंस की भी चल रही है। मतलब ऐसा है कि दसों दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं, सब क्षेत्रों में काम करेंगे। और आप इस बात को समझिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई भी एक क्षेत्र छूट गया तो अच्छी दुनिया नहीं बनेगी। सब कुछ अच्छा हो गया, डॉक्टर खराब हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, मास्टर खराब हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, पत्रकार ही खराब हो गए, कैसे दुनिया बनेगी? बन नहीं सकती। इसलिए हम सर्वांगीण विचार करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, सब समाज का उत्थान होगा, सब बराबरी पर खड़े होंगे और सब लोग इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इसलिए ये आयोजन है। सब राजयोग की यात्रा पर निकलेंगे, चाहे आदरणीय त्रिपाठी जी हो, चाहे हमारे मीणा साहब हो, चाहे जलगांव के सोमनाथ जी हो, चाहे अभी अभी पीएचडी प्राप्त करने वाली हमारी बहन डॉक्टर रीना हो, उनको मीडियम पीएचडी प्राप्त हुई है, आप जरा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। सब निकले हुए, सब इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ बनाएंगे। मैं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके चिकित्सकों को ठीक करने नहीं जाऊंगा, मैं अपना क्षेत्र ठीक करूंगा। आज की समस्या क्या है, लोग दूसरों को ठीक करने में लगे हैं। सब सारा समाज राजनीति को ठीक करने में जुटा हुआ है, राजनेता समाज को ठीक करने में लगे हैं, समाज मीडिया को ठीक कर रहा है, एक दूसरे को ठीक करने में सब बिगड़ रहे हैं। जबकि आत्म सुधार से जन सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अपने दिल में देखिए, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। स्वयं का सुधार करेंगे, आत्म सुधार करेंगे, अपने क्षेत्र में का विचार करेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। हम क्या कहते हैं कि साहब राजनीति बड़ी पतित हो गई, डॉक्टर बड़े खराब हो गए, पत्रकार बड़े बिगड़ गए हैं, मास्टर पढ़ाते नहीं ट्यूशन करते हैं। आप अपने क्षेत्र का विचार करिए, आप जहां बैठे वहां क्या कर रहे हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे वहां कौन सा काम आप कर रहे हैं। अपने अपने कर्तव्य को न करते हुए अपने अधिकार के लिए चिंता करना, इसके लिए भारत बिगड़ा है, इसके लिए भारत चौपट हो रहा है। अधिकार बोध बहुत है, कर्तव्य बोध शून्य है। और ये जिस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं, इस प्रकार के आयोजन हैं, ये व्यक्ति में कर्तव्य बोध जगाने के लिए, उनके दायित्व बोध को जगाने के लिए, कैसे सुंदर दुनिया बन सकती है, कैसे अच्छी दुनिया बन सकती है, उस उत्तरदायित्व को हम निभाना चाहते हैं। और इसलिए हम यहां इकट्ठे हुए, ये प्रचार के लिए इकट्ठे नहीं हुए, इसके समाचार की आवश्यकता नहीं है, ये आत्म सुधार के लिए, आत्म प्रक्षालन के लिए, आत्म दैन्य से मुक्त होकर अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए यात्रा है। और इसलिए आप और आपका परिवार जब आनंद से रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण की तरह परिवार बनेंगे, और जिस परिवार की कल्पना हम करते हैं वो परिवार हमारे सामने होगा। सारी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान को आदर से देखा जाता है तो किन कारणों से, क्या हमने कोई नोबेल प्राइज जीते रखे हैं, क्या हमने इसराइल की तरह 20 नोबेल जीते, नहीं। हमारे पास एक श्रेष्ठ परिवार कल्पना है, हमारे पास एक संस्कृति है, हम एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी है, हम मूल्य आधारित समाज है। इसलिए हमें पुनः उन मूल्यों की तरफ लौटना पड़ेगा जो हमने पछुआ हवा में अपने पैर उखड़ने दिए और हमारे पैर हमारी संस्कृति की जड़ों से उखड़ गए, हमें पुनः वहां लौटना है। और इसलिए पत्रकारिता में हमने मूल्य आधारित पत्रकारिता, समाधान परक पत्रकारिता का अभियान प्रारंभ किया है। पिछले 2 वर्ष लगातार हमने इस अभियान को चलाया। आदरणीय शांतनु जी, आदरणीय सुशांत जी के नेतृत्व में देश भर में कार्यशालाएं हुई, और इन कार्यशालाओं के माध्यम से जो सत्य और तत्व निकल करके सामने आया कि हम सिर्फ प्रश्न पूछने वाले लोग नहीं है, हम सिर्फ सवाल खड़े करने वाले लोग नहीं है, हम समाज की समस्याओं का समाधान भी खोजेंगे। हेनरी ल्यूस लिखते हैं कि वे जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रह सके। दुनिया के दिल को समझना, लोगों के दिल को समझना, उनके मन को समझना, ये मीडिया की यात्रा है, इसको हम शायद भूल गए। और अच्छी पत्रकारिता और अच्छा टेलीविजन एक सुंदर दुनिया बना सकता है, ये अमरकोट साहब कहते हैं। अगर हम इसका सकारात्मक इस्तेमाल करेंगे, देखिए अभी मेरी सुबह जलगांव से पधारे प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, टूल्स की बात हो रही थी, सोशल मीडिया के बारे में बात हो रही थी कि सोशल मीडिया की बड़ी आलोचना हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। आप टूल को गालियां देते हैं, ये टूल है, माई टूल है, इस पर मैं आया हूं, इस पर अभी हमारे रिश्तुल्य बहने यहां पर बोल रही हैं, पूज्य जन बोल रहे हैं, इसी माइक पर कोई बुरा आदमी आकर बुरी बात भी कह सकता है। इसलिए आप टूल को गाली नहीं दे सकते, मीडिया एक टूल है, सोशल मीडिया एक टूल है, अखबार एक टूल है, टेलीविजन एक टूल है, उस टूल का आप कैसा इस्तेमाल करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। हम टूल्स को दोष देते हैं कि ऐसा मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है, मोबाइल का इस्तेमाल करना आपको नहीं आता उसको सीखिए, माइक का इस्तेमाल करना आपको नहीं आता, कैमरा का इस्तेमाल करना आप, कैमरे से क्या बनाना ये आप तय करेंगे, टेलीविजन पर क्या दिखाना ये आप तय करेंगे, समाचार पत्र में कौन सा समाचार छापना कौन सा नहीं छापना, किसको ओवर प्ले करना किसको अंडर प्ले करना ये आप तय करते हैं। कई बार हम टूल्स को दोष देते हैं जबकि इन टूल्स का इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। एक तलवार होती है, उस तलवार से राक्षस का वध भी होता है, उस तलवार से आतंक भी बचाया जा सकता है, लाठी रक्षा के लिए या लोगों को ठोकने के लिए, यह आपको तय करना पड़ेगा। तो इसलिए टूल्स को दोष मत दीजिए, पत्रकारिता को दोष मत दीजिए, पत्रकारिता करने वाला कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, पत्रकारिता गलत नहीं हो सकती, ये आपसे बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूं। कोई डॉक्टर खराब हो सकता है, डॉक्टरी खराब नहीं हो सकती, इसलिए किसी एक व्यक्ति के किए गए अप्रिय कर्म से पूरी कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते। मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो 5 रुपए की फीस लेते और इलाज करते, मैं ऐसे डॉक्टरों को भी जानता हूं जो 1000 रुपए फीस लेते, सुबह 10 मरीज देखते, शाम 10 मरीज देखते, दोनों की कमाई बराबर है, ये उसका अपना चयन है, उसने चुना है, एक ने चुना है लोक सेवा कि मेरी डॉक्टरी है, मैं अधिक से अधिक लोगों को सेवा दूंगा। एक ने चुना नहीं, मैं सुबह 10 देखूंगा, शाम को 10 मरीज देखूंगा, बाकी मौज मजे करूंगा, पाप कान खाऊंगा, टीवी देखूंगा, इसका चयन है। मैं उसको भी गलत नहीं कहता, उसका रास्ता है, पर हमारा रास्ता दिरायतदारी का है। हम लोगों के लिए है, हमारी सेवा, हमारी साधना, हमारी शिक्षा लोगों के काम नहीं आती तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। और आप देखिए, भारत इसीलिए एक लोकतांत्रिक गणराज्य, क्योंकि इसकी जड़ों में चीज है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने अंतिम सत्य कह दिया, हम कहते आए हैं आनो भद्रा करतो यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से हमको कल्याणकारी विचार प्राप्त हो, यह हमारा मूल मंत्र है। हमने खिड़कियां दरवाजे बंद करके नहीं रखे, और इसीलिए हमने ये भी कहा सत्यमेकं विप्रः बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक ही है, विद्वान जन उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। मैं जो कह रहा हूं उससे हमारे योगेश पांडे दिल्ली से बधारे सहमत हो नहीं सहमत हो चलेगा, अर्चना जी सहमत हो नहीं सहमत, उनकी अलग राय, वो अपनी राय रख सकते हैं, गोपाल नारसन अलग राय रख सकते हैं और रखते भी हैं, और इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए भारत इतना जीवंत लोकतंत्र है, इसमें सब अपनी राय रख सकते हैं। मुंडे मुंडे मतरे बनना, ये हमारे ऋषि कहते हैं, हम नहीं कहते। अलग अलग विचार करने का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये विचारों की आजादी है, विचारों की स्वतंत्रता है, और इसलिए इस देश को आत्मनिर्भरता के मंत्र पर लेकर के जाना है। आत्मनिर्भरता का आशय क्या है कि हम नैतिक बने, जब हम नैतिक बनेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें, हमारी रूट्स पे हमारे पैर खड़े रहेंगे, और जब पर्यावरण के प्रति सचेत होंगे ये दुनिया रहने लायक बनेगी, और जब हम कौशल विकास करेंगे, कोई ना कोई स्किल सीख करके काम करेंगे तो हम एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए नैतिक शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा और कौशल विकास की शिक्षा, तीन शिक्षा से एक आत्मनिर्भर दुनिया बनाने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और जो मीडिया की शिक्षा है वह तो आत्मनिर्भरता की शिक्षा है ही। आपने अगर अच्छा कैमरा चला लिया आप भूखे मरोगे, आप अच्छा लिखना सीख गया भूखे मरोगे, आप अच्छे गीत कविताएं कहानियां लिखते हो, अच्छी एडिटिंग जानते हो, भूखे नहीं मर सकते। इसलिए मीडिया की जो एजुकेशन है वो पूरी आत्मनिर्भरता की एजुकेशन है, और इसलिए हम मीडिया कर्मियों को सबसे आत्मनिर्भर समाज मानते हैं जो कभी रिटायर नहीं होते। कोई पत्रकार को आप सुना, वो पूर्व पत्रकार है, यहां पूर्व कुलपति जी बैठे हैं, मैं पूर्व महानिदेशक कह के परिचय कराया गया, पर आपने किसी पूर्व पत्रकार को नहीं सुना, पूर्व पत्रकार है, भूतपूर्व विधायक भी होते, पूर्व सांसद भी होते, कभी पत्रकार रिटायर नहीं होता, क्योंकि वो विचार की यात्रा पर है। वो जितना वरिष्ठ होता जाता है, जितना बड़ा होता जाता है, जितना बुजुर्ग होता जाता है, उसकी ज्ञान राशि बढ़ती जाती है, वो उतना समाज के लिए उपयोगी होता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसने दुनिया देखी है, उसके पास अन्यान्य अनुभव है। और इसलिए हमें लोगों को कुछ करने के लिए करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं रे भाई। यही समाज का भी मंत्र है, यही मीडिया का भी मंत्र है, अलग अलग मंत्र नहीं है। हमारे समाज में समाज के लिए सिद्धांत अलग है, मीडिया के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया, ये समाज का भी मंत्र है, ये हमारा मंत्र है, ये डॉक्टर का मंत्र है, ये मास्टर का भी मंत्र है, ये मीडिया का भी मंत्र है। सर्वे भद्राणा पश्यंतु मां का सिद्ध भाग भवेत। और गालिब साहब ने लिखा जो शेर में अक्सर सुनाता हूं, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। इंसान बनिए, इंसानियत की यात्रा पर चलिए। ईश्वर ने आपको पैदा कर दिया, आप आदमी तो हो गए, पर इंसान बनने के लिए कुछ प्रोसेसिंग जरूरी है। वो प्रोसेसिंग कहां पूरी होगी? फैमिली के अंदर होगी, परिवारों में होगी, स्कूलों में होगी, प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय में होगी, ब्रह्मा बाबा के ज्ञान से होगी। इस श्रीमत से जुड़ करके आपकी प्रोसेसिंग पूरी होती है, आप मनुष्य बन जाते हैं, इंसान बन जाते हैं। और हमारे ग्रंथ कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य बनना आसान काम नहीं है, एक प्रोसेसिंग के बाद आप मनुष्य बनते हैं। और इसलिए मनुष्य बनने की यात्रा पर हम निकले हुए, एक सकारात्मक दुनिया, एक सकारात्मक मीडिया, दूसरों के दुख में दुखी, दूसरों के आनंद में आनंद प्राप्त करने वाला समाज हमको बनाना है। दूसरों की प्रगति से चिढ़ जाने वाले, पड़ोसियों की खुशी में दुख देने वाले, ऐसा समाज में नहीं बनना है। ये पर हमारे अंदर ये बीमारी है कि हम दूसरों के आनंद से दुख प्राप्त करते हैं, हमें मजा नहीं आता। इसको टेलीविजन के लोग बुलाते हैं, एडवर्टाइजिंग के लोग बुलाते हैं। एक टीवी का एड है, आप खुश होंगे पड़ोसी ईर्ष्या करेंगे। आप सोचिए, जिससे हमारा भातृत्व संबंध होना चाहिए, उसके घर अच्छा टीवी आने से सबसे भी दर्द हमें हो रहा है कि उसके घर में इतना बड़ा टीवी क्यों है, हमारे घर में छोटा टीवी क्यों है, उसकी बीवी इतनी सुंदर क्यों है, मेरी इतनी सुंदर क्यों नहीं है। तो ये जो चीज है इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। ये टीवी बीवी इस सब चीजों से ऊपर उठकर हमको ये राजयोग का जो ज्ञान है, ये दो मिनट का भी अगर आप ध्यान करेंगे तो आप में शांति आएगी, सद्भाव आएगा। क्योंकि देखिए, अंधेरा बहुत जब घना होता है, उजाले की तड़फ कभी बढ़ती है, इसलिए एक सतयुग आके रहेगा। आपको लगता होगा दुनिया बड़ी बुरी हो गई है, क्योंकि कई शायरों ने लिखा है, बड़े खतरनाक खतरनाक शायर लिखे अखबारों के लिए। एक शायर लिखते हैं मकबूर सईदी साहब, योगेश भाई, वो लिख रहे हैं, सुर्खियां खून में डूबी हैं सब अखबारों की, आज के दिन कोई अखबार न देखा जाए। सुर्खियां खून में डूबी हैं सब अखबारों की, आज के दिन कोई अखबार न देखा जाए। और फिर एक शायर लिखता है जो उम्मीद जगाता है, वो कहता है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। आप सब आए हैं, ये किस लिए आए? आप सब इसलिए आए हैं क्योंकि आपने अकबर इलाहाबादी का शेर पढ़ रखा है। अकबर इलाहाबादी दो बातें कहते हैं। अकबर इलाहाबादी पहले तो कहते हैं, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबले तो अखबार निकालो, ये तो बड़ा पॉपुलर शेर है। दूसरी बात तो उससे बड़ी कहते हैं, वो कहते हैं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। हम सब निकले तो है बाजार में, पर बाजार हमें आकर्षित नहीं करता, हमें ईश्वरीय ज्ञान आकर्षित करता है, राजयोग का ज्ञान आकर्षित करता है, इसलिए इस सभा में हम लोग आए हुए। लोग कहते हैं अच्छे लोग कमी है, अच्छे लोग कम हो रहे हैं, रावणों की संख्या बढ़ रही है, राम राज्य नहीं आएगा। आखिर इतने लोग इस सभा में आए हुए हैं, ये किसके लोग हैं? ये सब राम के लोग हैं, ये सब लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, सब लक्ष्मी नारायण के लोग हैं, और एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए हम आए हैं। अभी आपको जस्ट एक बात कह के मैं बात खत्म करना चाहूंगा कि जब उम्मीद बहुत कम हो जाती है तो आपको देखना चाहिए कैसे लोग दुनिया में। अभी एक सप्ताह पूर्व राजधर्म के पूर्व संपादक श्री वीरेश्वर द्विवेदी का निधन हुआ। आदित्य त्रिपाठी सर, आप उनको जानते होंगे। वीरेश्वर द्विवेदी जी उस पत्रिका के संपादक रहे, जिसके अटल जी संपादक रहे, दीनदयाल जी जिस पत्रिका को प्रारंभ किया उस पत्रिका के संपादक थे। हमने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पुस्तक निकाली राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर रविशंकर की, उसका उनको संपादन करने के लिए दिया परमा साहब। और जब उनको पेमेंट भेजनी हुई तो हमने उनसे कहा कि सर ये इसकी 10,000 रुपए पेमेंट हमें भेजनी है, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, क्योंकि सरकार आजकल सब अकाउंट पेमेंट करती है। उन्होंने कहा मेरे पास अकाउंट नंबर ही नहीं है, मेरे पास अकाउंट ही नहीं है। आप बताइए, इस गहरे अंधेरे में भी ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो प्रज्ञा पुरुष की तरह है, मैं कैसे मान लूं अंधेरा बहुत गहरा हो गया है? इसलिए नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, उस उम्मीद को बनाए रखने की जरूरत है जो बदलाव ला सकती है, जो परिवर्तन ला सकती है, और एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए मैं आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि आप इस अभियान से जुड़ें, इस आंदोलन से जुड़ें। और फैज अहमद फैज कहते हैं, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। एक सुंदर दुनिया बनेगी, सूरज निकलेगा, और हम सब इस अच्छी दुनिया को बनते हुए देखेंगे, उसके सहभागी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय द्विवेदी जी का। आपके शब्दों को अगर मैं सिर्फ इतने उसमें कहूं कि बदलाव देखना चाहते हो तो स्वयं में बदलाव लाना होगा, बदलाव देखना चाहते हो तो स्वयं में बदलाव लाना होगा। रोशनी हो, रोशनी से रोशन हो दुनिया, तो रोशन अपने मन को करना होगा, तो अपने मन को करना होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं रोशनी के लिए, एक प्रकाश के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए कहूंगी मैं, आईना है जिंदगी, आईना है जिंदगी, तू भी मुस्कुरा दे तो वो भी तुझे देखकर मुस्कुरा देगी। तो आइए दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रण दे रही हूँ मंच को, कि मंच आगे आएगा दीप प्रज्वलन के लिए, और मंच पर ही तीन जनों को आमंत्रण दूंगी। भ्राता सुशांत जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग, भ्राता निकुंज जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग, बहन चंदा जी, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग, और स्टेज के सामने सभी आएंगे जोनल कोऑर्डिनेटर्स मीडिया विंग, सभी सेशंस के स्पीकर्स, भ्राता अरविंद चौधरी सीनियर करेस्पॉन्डेंट मुरम, नीचे वाले कैंडल लाइटिंग्स का जो होंगे उनके नाम ले रही हूँ, सभी स्पीकर्स होंगे नीचे कैंडल लाइटिंग के लिए, एवं भ्राता अरविंद चौधरी जी, गुणवंत यादव जी, भ्राता शशिकांत त्रिवेदी जी गुजरात, भ्राता देवेंद्र मंदोरा गुजरात, आप सभी सेशन के जो भी स्पीकर हैं, सब सामने नीचे जहां कैंडल लाइटिंग है वहां एकत्र होंगे और मंच और जोनल नेशनल कोऑर्डिनेटर सुशांत निकुंज जी चंदा बहन मंच पे होंगे। मंच पर दीप प्रज्वलन हो जाए और उसके बाद ही नीचे दीप प्रज्वलन होगा।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत।
नीचे दीप प्रज्वलन प्रारंभ करेंगे,
जग उजियारा होगा प्रेम से,
बहुत प्यार से प्रज्वलन करेंगे। मंच वाले अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए
खुशखबरी देती हूँ कि आज के ये कार्यक्रम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन 93 FM पर चल रहा है।
मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम
सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे ताकि आगे हम बढ़ सकें।
अब तुम इस संसार में,
और अब इस दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया के पश्चात मैं आमंत्रण देना चाहती हूँ हमारे मीडिया विंग के चेयरपर्सन भ्राता करुणा भाई जी को। आप सबके लिए चिर परिचित अपना सा चेहरा, जिन्हें आप बहुत बखूबी से पहचानते हैं, एक बहुत दिल में प्यार और सम्मान की भावना भाई साहब का आप सबके लिए, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी ही, लेकिन लगातार तुम्हें ही तो चलना होगा। है अगर विश्वास तो मंजिल तो मिलेगी ही, लेकिन लगातार तुम्हें ही तो चलना होगा। हो जहां भी अंधेरे का राज कहीं, हो जहां भी अंधेरे का राज कहीं, दीप सा बनकर तुमको ही तो चलना होगा। दीप सा बनकर तुमको ही तो चलना होगा। आह्वान कर रही हूँ भ्राता करुणा जी का, आप चेयरमैन मीडिया विंग, चैनल हेड अवेकनिंग टीवी, पीस म्यूजिक टीवी और रेडियो मधुबन 90.4 FM के भी आप चैनल हेड हैं, शिवा रेडियो उसके भी हेड हैं। सबसे अनुरोध है अपना अपना स्थान ले लें, कृपया अपना अपना स्थान लें, बहुत समय आगे निकल रहा है, अपना स्थान लें। आप मैनेजमेंट बोर्ड ब्रह्मा कुमारी के मेंबर हैं, सेक्रेटरी राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के हैं, सेक्रेटरी रेडियो मधुबन के हैं, चीफ ऑफ मल्टीमीडिया हैं और मीडिया स्पोक्समैन हैं। मेरा आपसे नम्र अनुरोध है, आए और अपनी प्रेम भरी वाणी से हमारे इन मीडिया कर्मियों को एक विश्वास हिम्मत दें और उन्हें यह एहसास दिलाएं हम सब एक साथ आगे बढ़ने वाले हैं। भ्राता करुणामयी जी, तालियों के साथ आपका आह्वान है और मंच से और सभी पत्रकारों से अनुरोध है स्थान ग्रहण करने। भाई साहब की स्पीच शुरू होने जा रही है, सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
ओम शांति सत्यम शिवम सुंदरम। सभी मेरे पत्रकार बंधु, मेरे साथियों, मैं भी पत्रकारिता के व्यवसाय में 26 साल UNI में रहा हूं और उसके बाद आप जानते हैं जैसे बताया गया, अभी भी आप सबके साथ दो सैटेलाइट टेलीविजन चैनल और जो रेडियो स्टेशंस भी हम अलग अलग स्थानों पर कम्युनिटी रेडियो भी चला रहे हैं, पब्लिकेशन तो आप जानते ही है विद्यालय के अनेक भाषाओं में हर स्टेट में छप रहे हैं। आप सबको हमने ऐसे समय पर निमंत्रण देना पड़ा, इस समय जो सारे भारत में हमारे साथी सब दिल्ली के ओर ज्यादा सबका ध्यान है, फिर भी आप सभी ने जैसे हर साल हमारे पास हजारों भाई बहने आते हैं पत्रकारिता के व्यवसाय के, एक बार तो माउंट आबू में करते हैं हम, परंतु वहां केवल 400-500 भाई बहने आते हैं और ये समय जो है हम विशेष अपने परिवार के साथ आप सबको निमंत्रण दिए हैं और आप सभी पधारे हैं, इसलिए मैं दिल से आप सबको अभिनंदन करता हूं। ताकि इस बार मैं आपको कुछ ऐसी बातें स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया था तो ये एक विद्यालय है, स्कूल है, ये यहां आने के बाद ही मुझे मालूम पड़ा था ये कोई अन्य आश्रम जहां कोई गुरुजी रहते हैं या माताजी रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहां एक गुरुकुल शिक्षक के रूप में कुछ शिक्षाएं दे रहे थे, तो जिस कारण मैं सन 1960 से आज तक भी इस संस्था का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं सेवा भी कर रहा हूं। पहली बात मुझे मालूम पड़ा कि ये संसार सब माया है, ये सब जो दिख रहा है ये सब, ऐसा हम सुन चुके थे, परंतु जब मुझे पहली पार्ट मुझे ये बताया गया कि ये सब सत्य है जो मैं देख रहा हूं, ये सब चैतन्य है, ये माया या ऐसा नहीं है ये, और हम सब चैतन्य जीव है, जिसको जीवात्मा कहा जाता है, ये आत्मा कहा जाता है, ये पहला पाठ मैंने यहां सीखा है। तो जो रूप में आज हम हैं, जिनको जो जो डेसिग्नेशंस है, तो वो मरने के बाद भी कौन गया भाई, डॉक्टर साहब गए, इंजीनियर साहब गए, वकील साहब गए कहेंगे, परंतु हम सब चेतन आत्माएं हैं, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, वो हम आत्मा है। ये पहला पाठ मैंने यहां सीखा, जो इस बार आप सभी भी ये एक संदेश सारे विश्व को देने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी हो रही है, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु के ओर जा रहे हैं। तो ये शिक्षा जो है और किसी भी विश्वविद्यालय में या धर्म में बताया नहीं जाता है, जो हमको ये शिक्षा मिल रही है, हम सदा रहने वाले जीवित एक चैतन्य आत्मा है। दूसरी बात, आज आप जानते हैं, हम जानते हैं, विश्व में चार बहुत बड़े धर्म कहे, भारत में सनातन कहते हैं, दूसरे स्थानों में इस्लाम कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं या बुद्धिज्म कहते हैं, जो सबसे बड़े धर्म है। तो धर्म कहते ही ये कहा जाता है कि भाई यहां ईश्वर के ऊपर विश्वास ही है, ये नास्तिक नहीं है, आस्तिक है, ईश्वर के ऊपर इनको विश्वास है। अब प्रश्न आता है, क्या ये चार पांच धर्म के अलग ईश्वर है या कोई एक ही ईश्वर है? मुझे याद है, मैं जब इस आश्रम में आए, हमारे माताजी से मिला, तो उन्होंने जब कहा मुझे, हम ईश्वर को याद करते हैं, तो मैंने पूछा कि कौन से ईश्वर को, कौन से भगवान को? और मैं अपने आप को, मैं इंजीनियर भी हूं, मीडिया का हूं, तो जब मैं अपना परिचय बड़ा बड़ा दे रहा था, तो वो बहुत दिल से हंस रहे थे मेरे ऊपर। तो मैंने कहा, मैंने ऐसे क्या गलती की, कौन से भगवान को आप याद करते हैं, यही पूछा। तो उन्होंने कहा, सब पढ़ाई पढ़ लिया आपने, पर अभी तक आपको ये नहीं मालूम है ईश्वर एक है। तो ये पाठ भी मैंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पढ़ा कि ईश्वर एक है। तो थोड़ा सा एक प्रश्न आता है, ये क्या मेल है या फीमेल है ईश्वर? उस प्रश्न का मैं अपने आप में पूछा, बचपन से मुझे एक मंत्र सिखाया जाता था, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ऐसा कौन है जो मां भी है, बाप भी है, और पहले मां और इसके बाद बाप कहते हैं, तो हमें वो माता च पिता, कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता है ये। तो अर्थात भारत में हम शिवलिंग का भी पूजा करते हैं, ईश्वर एक ज्योति स्वरूप है, जैसे मैं आत्मा एक प्रकाश है, वैसे ईश्वर भी एक प्रकाश है, ज्योति है, हम सबके पिता है, परम पिता परमात्मा, और हम सब आत्माएं हैं। ये दूसरा पाठ मुझे ये है पक्का हो गया। अब तीसरी बात, हम सब यहां बैठे हैं और एक जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, एक भी नहीं, सारे विश्व में करोड़ों में, तो क्या कर रहे हैं? हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है, बहुत अच्छे बजा रहे हैं। मैं कई बार पूछता हूं, सबसे अच्छा कौन लगता है? सुबह उठ के अपना फेस देखते हैं तो खुशी होती है, हर एक को स्वयं में ही खुशी होती है। तो ऐसी क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं हम जो एक चैतन्य इस मंडप पर, जिसको सृष्टि का एक ड्रामा भी हम कह सकते हैं, तो ये पार्ट जो हम सभी हरेक बजा रहे हैं, तो ये सृष्टि भी कुछ ऐसी चीज है जो अभी तक इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिला जो कह दे मैंने ये सृष्टि रचा। आप सबको पता है कोरोना का पीरियड पे हवा नहीं मिल रहा था तो उसकी वैल्यू हमको मालूम पड़ा। पानी का तो पहले ही मालूम हो गया था कि बॉटल बॉटल बॉटल। तो ये प्रकृति भी पांच तत्व जो है ये है और हम भी है। जैसे ईश्वर सदा है, हम चैतन्य आत्माएं भी सदा है, तो ये सृष्टि का भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई हमने रचा या अब से है, नहीं। ये भी पांच तत्व जो है ये भी हम जैसे ही ये अनादि और अनंत है। ये तीसरा शिक्षा मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय मिला। फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है ये सृष्टि, आज हम सब यहां बैठे हैं, फिर भी कहते हैं ये गरीबी या ये साहूकार है। हर एक को अपने अपने रीति से कहा जाता है, कहे कि दुख और सुख का जो सृष्टि को हम आज हम देख रहे हैं ये क्या है। जब ये तीनों सदा रहने वाले हैं आत्मा परमात्मा और प्रकृति, ये दुख सुख ये क्या है, ये क्या ईश्वर ने ये भी दे दिया है क्या? तो ईश्वर कभी नहीं कहेंगे हमको दुख देता है, कभी भी नहीं, क्योंकि दुख में सिमरण करे पर सुख में भी करे तो दुख काय को हो। तो कुछ तो नियम होगा इस सृष्टि में, बहुत सरल है, बहुत सहज है, जिसको हम शब्द बड़े शब्द कहते हैं कर्म। ये सृष्टि कैसे चलता है? कर्म से चलता है। ये कर्म क्या है? किसी ने कहा यू स्माइल वर्ल्ड विल स्माइल। सचमुच हम सुख देंगे हमको सुख मिलेगा। सिंपल प्रिंसिपल, बड़े सरल शब्द में कहते हैं आप भाई जो बोते हो वही तो खाते हो, तो कर्म कोई और कोई कठिन नहीं है। ये भी शिक्षा हमको पीएचडी करने के बाद भी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या चीज होती है। कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म ये सब चीज हमारी बहनें रोज एक सत्संग करते हैं और हमको सिखाते हैं। केवल इतना ही है कि भाई जो तुम करेगा वही तुमको वापस मिलेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसको कर्म कहते हैं। बड़ा सरल शब्दों में रात दिन हम एक ही प्रयास करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जो हमको भी वो मिले। तो ये शिक्षा हम बच्चों को यहां सिखाया गया। जो लास्ट ये संस्था 87 इयर्स में बहनों द्वारा संचालित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आज 140 देशों में ये शिक्षा दिया जा रहा है। इतनी प्रगति ये संस्था कैसे प्राप्त की मैंने देखा हूं, 1960 से मैं देख रहा हूं। ये लोग सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, दूसरों से पूछे कि भाई टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी है हम, टाइम ही नहीं है, 24 घंटा तो सबके पास है फिर भी टाइम ही नहीं है, बिजी है, अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं है। पर मैंने देखा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय वालों ने एक ऐसा समय निकाला जो कह ही नहीं सकता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। 4 बजे उठते हैं, क्या करते हैं भाई? तो हम शक्ति प्राप्त करते हैं, किससे, कौन से गुरु से? तो कहा गया एक ही ईश्वर है जो सभी धर्म को सारे विश्व को देने वाला शक्ति, तो हम एक मिनट के लिए उस ईश्वर की याद के लिए बैठेंगे।
अपने सुकर्मों के प्रसार भी सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, ये संगम का
से यही निवेदन करूंगा। तो आपका तीन चार दिन जो यहाँ आप रह रहे हैं, तो ईश्वरीय शक्ति को कैसे प्राप्त करें, सहज राजयोग हम कैसे करते हैं, इसको आप अपने जीवन का एक अंग बना करके यहाँ से जाएंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता करुणा जी, आपके दिल के भाव हम सब तक पहुँचे हैं कि अपने को भी अगर हम योग से जोड़ लें तो ये कलम कमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रण देना चाह रही हूँ आदि नृत्य कला डांस एकेडमी खड़गपुर, वहाँ के कलाकार हमारे मध्य आए हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से आए और हमें अपना संदेश दें। आपके गीतों के बोल नमामि शिव चरणों में
Thank you.
बहुत सुंदर प्रस्तुति और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब आगे बढ़ते हुए आ जाएं, कलाकार सब आगे आए, सम्मान कर रहे हैं हमारे मंच वाले आपको पुष्प दे करके, और हम तालियां बजा दें इनके सम्मान में। और अब मैं आमंत्रण देने जा रही हूँ, हमारे बीच विराजित है डॉक्टर प्रोफेसर मानसिंह परमार जी, आप पूर्व वाइस चांसलर खुशाबाओ यूनिवर्सिटी, खुशाबाओ ठाकरे यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आपके जीवन की विशेषता कहूं तो आपने मीडिया को प्रोफेशन नहीं, एक मिशन के रूप में देखा है। आप सदा देखते हैं कैसे सकारात्मक परिवर्तन सामाजिक और सांस्कृतिक सिनारियों में आ सके। आप उस पर काफी प्रयासरत रहते हैं, मेहनत करते हैं एक एक को जोड़ने की, आगे बढ़ाने की। अब मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ भ्राता आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर परमार जी, मानसिंह परमार जी, तालियों के साथ आपका मंच पर आमंत्रण।
मंच पर विराजित परम श्रद्धेय डॉक्टर बी के निर्मला जी, ब्रदर भाई जी बी के करुणा जी, भाई जी, आत्म प्रकाश जी, बीके सरला जी, चंद्रकला जी और मेरे अभिन्न मित्र और भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक संजय द्विवेदी जी और देश भर से आए मीडिया के साथियों, मीडिया शिक्षकों और भी विद्वज्जन जो इस सभागृह में बैठे हैं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गंभीर, आवश्यक विषय पर ये सेमिनार हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और अभी बताया गया था कि दिल्ली में भी G20 हो रहा है। तो एक ये योग संयोग है कि देखिए, जिस शांति और सद्भाव जिससे कि समाज का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है और विश्व का भी निर्माण होता है, ऐसे विषय पर यहाँ चर्चा हो रही है और G20 में भी विश्व के कई देशों से आए प्रमुख शासन देश के प्रमुख लोग कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम देखें तो पूरा विश्व एटम बम बारूद के ढेर पर बैठा हुआ ऐसा लगता है। कई देशों के पास परमाणु बम है, अगर वो सब उसका इस्तेमाल करें तो इस धरती पर शायद जीवन ना बचे। ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति और सद्भाव के लिए कैसे मीडिया सशक्त हो, इस पर यहाँ पर चिंतन मनन विचार विमर्श हो रहा है। ये बहुत ही एक सराहनीय, अभिनंदनीय और यूं कह सकते हैं कि विश्व में एक अलग तरह का कार्य हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं होती थी। ये पत्रकार बंधु पुराने बैठे होंगे तो कभी मूल्यों की बात नहीं होती थी, मूल्यों की बात करते थे तो वो इस तरह से बात करते थे भी क्या मूल्य होते पत्रकारिता में, परंतु आज हमें मूल्यों पर, सकारात्मक पत्रकारिता पर लौटना पड़ रहा है। भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध रही है, हम कहते हैं हम विश्व गुरु रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी एक धारणा, एक सोच, एक चिंतन रहा है और इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक धरा एक परिवार और एक भविष्य। तो एक धरा एक भविष्य और एक परिवार, जब तक शांति और सद्भाव की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि शांति और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। शांति के बिना किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि विश्व में शांति का संदेश फैले और शांति पत्रकारिता, अभी शांतनु भाई से बात हो रही थी, पीस जर्नलिज्म के ऊपर कहीं न कहीं चर्चा हो और इस दिशा में हम आगे बढ़े। बहुत कुछ बदलाव आया है, देखिए बहुत सारे अखबार, कुछ अखबार कहते हैं कि हम सोमवार को नेगेटिव न्यूज नहीं छापेंगे, कुछ चैनल इस तरह की बातें करते हैं। तो ये बदलाव, सकारात्मक बदलाव मीडिया में आना शुरू हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान इस संस्था का, विश्वविद्यालय का, ईश्वरी विश्वविद्यालय का है कि लोगों में इस सोच तक वो पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य, इतने सारे लोग साल में दो बार आते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा सराहनीय कार्य है जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि मीडिया को कैसे सशक्त किया जाए। मीडिया तो पहले ही सशक्त है, अभी डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने कहा, खींचो न कमान हो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, टीवी चैनल चलाओ, FM रेडियो चलाओ और नहीं तो सोशल मीडिया का सदुपयोग और दुरुपयोग शुरू करो। ये कहां मीडिया सशक्त नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, हम अगर मीडिया की सशक्तता पर जाते हैं तो जब भारत आजाद हुआ और जब भारत का संविधान बना तो भारतीय संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता कहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहिए, बोलने की स्वतंत्रता संविधान के प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है, उसमें सद्भाव भी है, उसमें बंधुता का भाव भी है। जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है, एक पिच का प्रस्तावना है। मेरा सारे लोगों से आग्रह है कि एक बार उस प्रस्तावना को पढ़े, एक एक शब्द को पढ़े, वो मोती जैसे शब्द हैं चुने गए हैं जिसमें बहुत कुछ गहराई है, बहुत कुछ कहा गया है। तो भारतीय संविधान ने फिर एक संविधान के अनुच्छेद 19(1) में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप सब शामिल है, सोशल मीडिया भी शामिल है, प्रिंट भी, इलेक्ट्रॉनिक भी, FM रेडियो भी, बोलने भाषण देने वाले लोग भी, सब शामिल है। तो ये स्वतंत्रता हमको संविधान ने दी हुई है, इसलिए मीडिया तो सशक्त होना चाहिए, उसको बोलने की पूरी आजादी है। इसके बाद में एक हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो भी मीडिया के उन्नयन का काम करती है, वो भी पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करती है, वो भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात करते हैं। परंतु आज तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, इस तरह के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रहे हैं। परंतु फिर भी मीडिया को सशक्त करने में थोड़ी बहुत भूमिका मीडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रही है। अब सवाल यह है कि सशक्तता कैसे आना चाहिए और कौन सशक्त होना चाहिए, मालिक सशक्त होना चाहिए या संपादक सशक्त होना चाहिए या हमारे मीडिया कर्मी सशक्त होना चाहिए, कौन सशक्त होगा, मीडिया कैसे सशक्त होगा? अगर मीडिया कर्मी सशक्त नहीं होगा तो कैसे मीडिया सशक्त होगा? ये एक बहुत ही गंभीर और चिंतन का विषय है, क्योंकि आज मीडिया, मैं बहुत बहुत उससे बोल रहा हूं, अपनी विश्वसनीयता को बहुत कम कर चुका है। समाज में मीडिया की विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है। आप सोचिए, जितने टीवी चैनल चला रहे हैं दिन भर, उसको ऐसा लगता है जैसे कोई वो टीवी सीरियल चला रहे हो, न्यूज नहीं दे रहे हैं, वो कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जैसे कोई दिन भर उसको चलाते रहते हैं, 24 घंटे चलाते रहते हैं। तो क्या ये ऐसा मीडिया सशक्त होना चाहिए? एक और मुद्दा मैं बताऊं आपको जो बहुत गंभीर है, कई बार चर्चा में हुआ है, न्यूज क्लिक का माध्यम मामला है, न्यूज क्लिक का। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालकर हम पत्रकारिता कर सकते हैं क्या? बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 में तो स्वतंत्रता दी गई है, परंतु उसी के साथ अनुच्छेद 19(2) में फिर कुछ चीजें लिखी गई हैं, कुछ चीजें नियंत्रण की कही गई है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मुद्दा है। हम किसी भी हद तक मीडिया को इतनी स्वतंत्रता, इतना सशक्त ना करें कि देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसान होने की दिशा में आगे बढ़े। मैं यहाँ नकारात्मकता की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रूथ है, सच्चाई है, उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने में भी जरा भी हिचक नहीं करते। तो ऐसे समय में यहाँ पर हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि शांति, और वो भी वैश्विक शांति, हाँ, वैश्विक शांति बहुत जरूरी है। रूस यूक्रेन को और यूक्रेन रूस को खत्म करने में लगा हुआ है, चाइना हमारे साथ लगातार षड्यंत्र कर रहा है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश हमारे प्रति कोई अच्छे भाव नहीं रखता है। हम भले ही कितनी शांति के सद्भाव की बात करें पर पाकिस्तान को कभी भी शांति और सद्भाव की बात समझ में नहीं आती। तो ऐसे में हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि कितनी स्वतंत्रता हो, कितना मीडिया को सशक्त किया जाए, वास्तव में मीडिया को सशक्त तो करना चाहिए, पर कैसे होगा? मूल्य आधारित पत्रकारिता करके मीडिया सशक्त होगा, अपनी विश्वसनीयता को पुनः पाने के लिए प्रयास करके मीडिया सशक्त होगा, आचार संहिता का पालन करके मीडिया सशक्त होगा, और वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी और सबसे बड़ी बात सत्यमवद, सच्चाई को सामने रखकर के अगर मीडिया काम करेगा तो निश्चित रूप से सशक्त होगा। कैसे चाहते हैं आप सशक्त हो? देखिए, इस देश में या लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और आप सब बैठे हैं जो खबर पालिका के लोग, आप सोचिए, अगर मीडिया सशक्त नहीं होगा, तीन पांव अगर मजबूत है और एक पांव उसका कमजोर होगा, तो कैसे वो लोकतंत्र टिक सकता है? तो लोकतंत्र को टिकाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है कि मीडिया सशक्त हो, बहुत जरूरी है। परंतु कहीं न कहीं फिर वही बात हम करते हैं कि कभी कभी ऐसा आता है कि जुडिशियरी एक्टिविज्म नजर आ रहा आपको, हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां उनको नहीं करना चाहिए वहां भी वो खुद आगे बढ़ करके और काम कर लेते, जो काम कार्यपालिका या विधायिका का है, कभी कभी ऐसा लगता है कि न्यायपालिका कर रही है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। और दूसरा एक और बात मैं कहूंगा मीडिया एक्टिविज्म की, आज जो ट्रायल हो रहे हैं, जज भी पत्रकार बन गए हैं और निर्णय भी पत्रकार दे रहे हैं, मीडिया ट्रायल चल रही है, जिस मुद्दे पर जो चाहे बिना तथ्यों के कभी कभी तो पूरी फिल्म लिख देते हैं, वो कौन सी टाइगर फिल्म हो या जैसे और कोई फिल्म हो, इस तरह की पूरी स्क्रिप्ट लिख करके तैयार करें। तो ऐसे समय में हम यहाँ बैठकर जो चर्चा कर रहे हैं, हम जाकर के हमारे बिरादरी में, हमारे मीडिया कर्मियों के बीच में ये शांति और सद्भाव की बात को फैलाएं, उनके बीच में रखें, उनसे चर्चा करें कि नेगेटिव रिपोर्ट या नेगेटिव नकारात्मक पत्रकारिता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसको नहीं छापना है, सत्य को छापना चाहिए, ट्रुथ जो है उसको छापना चाहिए, निश्चित रूप से तथ्यपूर्ण बातें होना चाहिए, परंतु बिना तथ्यों के कोई बात नहीं होना चाहिए। तो ये आप अपने क्षेत्र में, अपने संस्थान में जहां काम करते हैं, अगर हम जितने लोग बैठे हैं, हम पांच पांच लोगों से संपर्क करके शांति, सद्भाव, सकारात्मक पत्रकारिता, सॉल्यूशन बेस्ड मीडिया या अच्छी बातें करें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभियान, ये एक आंदोलन इस पत्रकार इस ईश्वरी विश्वविद्यालय ने शुरू किया है, ये पूरे देश में कारगर सिद्ध होगा। और जो हम कल्पना कर रहे हैं कि सतयुग आ रहा है, हर वर्ग के लोग, डॉक्टर भी अच्छे हों, इंजीनियर भी अच्छे हों और शिक्षक भी अच्छे हों और उसके साथ पत्रकार भी अच्छे हों, अच्छे भाव रखें, तो ये विश्व हमें अच्छा नजर आएगा और पूरे विश्व में हम ये बात फैलाएंगे, क्योंकि अब सारी नजरें पूरे विश्व की भारत के ऊपर टिकी हुई है। आप ये बात माने या नहीं माने, जो प्रेसिडेंट अमेरिका का कभी हमारे प्रेसिडेंट को या हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, वो गले मिलता है, अब कुछ राष्ट्राध्यक्ष चरण स्पर्श करते हैं, तो इस तरह की जो बातें हैं वो अब अच्छा समय आ रहा है, भारत का भी अच्छा समय आया है, आ रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, हम आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं, राजनीतिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं और सभी तरह का विकास हो रहा है और पत्रकारिता में भी विकास हो, और पत्रकारिता अगर एक बहुत शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करे शांति, वैश्विक शांति और सद्भाव फैलाने में, तो ये हमारा जो आज का कॉन्फ्रेंस है वो निश्चित रूप से बहुत बहुत पूरे विश्व में एक संदेश देगा कि वैश्विक शांति और सद्भाव केवल मीडिया को सशक्त करने से ही आ सकती है और निश्चित रूप से हमारे समाज और देश का विकास इसी में निहित है। अच्छे कामों को करना चाहिए और निश्चित रूप से कबीर का एक जो दुआ है वो पत्रकारों को लिए बड़ा अच्छा लगता है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर, ना आप इधर का छापे, संजय जैसी पत्रकारिता करें, महाभारत के निष्पक्षता से सारी बातों को रखें, सत्य को सामने रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता परमार जी। सत्यता और मूल्यों के द्वारा ही सशक्त मीडिया अपने दायरे में रहकर कार्य करें, आपने संदेश दिया। और अब हम आगे बढ़ते हुए बहुत सुंदर दृश्य की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कहूं या कहूं सम्मान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आमंत्रण दे रही हूं भ्राता त्रिपाठी जी को और साथ ही साथ आरती त्रिपाठी जी को, जो कि एसएस त्रिपाठी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन, आपको आमंत्रित दे रही हूं कि आप आए और आदरणीय भ्राता करुणा जी, आतम जी और शांतनु जी को सम्मानित मोमेंटो के द्वारा करें आप। और आरती त्रिपाठी जी, आप मेंबर ऑफ प्रेस काउंसिल, आप भी आगे आए त्रिपाठी जी के साथ। साथ ही साथ मैं इनके बाद आमंत्रण दे रही हूँ, हमारे बीच विराजित हैं डॉक्टर श्री गोपाल नारसन, वरिष्ठ पत्रकार रुड़की, आपके द्वारा लिखित विविधताओं का शहर रुड़की पुस्तक का विमोचन होगा। आप भी तैयार रहे ताकि हम एक साथ दोनों सम्मान कहूँ और विमोचन कहूँ ले सके। हमारे बीच एसएस त्रिपाठी जी आगे आ चुके हैं और हम सम्मान को तालियों के साथ अपना साथ देंगे। आरती जी अति शीघ्र आगे आए, जल्दी जल्दी आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा। त्रिपाठी सामादरणीय निर्मला दीदी जॉइंट चीफ ब्रह्मा कुमारी, आपका भी अभिनंदन कर रहे हैं। और करुणा भाई जी को आपने मोमेंटो प्रदान करके सम्मानित किया। और अब बढ़ रहे हैं आत्म प्रकाश जी के और मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं आप आदरणीय भ्राता शांतनु जी को। आतम जी का आपने सम्मान किया शॉल पहना करके, आप शांतनु जी को मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। और तालियों के द्वारा हम भी अपने सम्मान की भावनाओं को रख रहे हैं। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ श्री गोपाल नारसन, वरिष्ठ पत्रकार, सामने आएंगे और अपनी पुस्तक का विमोचन कराएंगे। अति शीघ्र आगे आएंगे। और अब हम देख रहे हैं विमोचन पुस्तक का, आपके द्वारा लिखित विविधताओं का शहर, इस किताब का विमोचन। शांतनु जी बैठे हैं। उन्हें हम तालियों के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रण दूंगी हमारे बीच विराजित आदरणीय दीदी जी, जो कि जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारी, आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर एशिया पैसिफिक रीजन। और आप बाय प्रोफेशन एक समय डॉक्टर रहे, लेकिन आज भी आप डॉक्टर हैं, सबको तन मन से रिष्ट पुष्ट बनाती हैं, दिशा देती हैं। आपका क्षेत्र इंटरेस्ट का जो क्षेत्र है, आप कहती हैं स्व परिवर्तन से ही सब कुछ होगा। स्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले चलेगा। आपका शांत भाव, चित्त शांत, मन साफ, ये आपकी विशेषताएं हैं। आप सदा साफ दिल से, प्रसन्नता से सबसे मिलती हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आप अपना भाव हमारे बीच रखें, हमें दिशा निर्देश दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें और हम स्थिर होकर के आपकी ब्लेसिंग्स अपने साथ आत्मसात करेंगे। आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी हमारे मध्य, तालियों के द्वारा।
ओम ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य वक्तागण तथा सभा में उपस्थित सारे पत्रों, आज दुनिया में सब चाहते हैं शांति हो और कहते भी है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो एक पिता के हम सब संतान हैं, चाहे भारतवासी है, चाहे यूरोपवासी है, अमेरिकन है, सब ईश्वर की संतान है। और जब ये स्मृति रहती है कि हम भाई भाई हैं, तो नेचुरली हार्मनी हो जाती है। आज विश्व में सब शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, परंतु सुख शांति के लिए हमें ये भातृत्व की भावना जारी रखनी है, स्मृति में रहे। तो जब हम रूहानियत में रहते हैं तो नेचुरली ये बात संभव है, हार्मनी। हम देखते हैं ऑर्केस्ट्रा में सबका आवाज म्यूजिक अलग अलग होता है, परंतु जब वो हार्मनी में रहता है तो एंटरटेन करता है। वैसे इस संसार में हम देखते हैं कि वैरायटी संस्कार के मनुष्य है, और वो मनुष्य जब अपने में हार मानते हैं, हार मनी माना, हार माननी, मैंपन छोड़ के हमें हमेशा ये भान में रहना है कि हम सब एक पिता के संतान है और हमारा कर्तव्य है एकता से काम करना। और इस स्मृति से जब हम चलते हैं तो संसार में पीस जरूर स्थापन होंगी। और हम जब ओम शांति कहते हैं अर्थ सहित कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये बुद्धि में रहे और शांति के सागर परमात्मा के हम संतान हैं, शांति धाम के हम ओरिजिनल रेसिडेंट्स है। तो ये स्मृति रहने से शांति जरूर रहती है। और मीडिया इस विश्व में शांति स्थापन करने काफी मदद कर सकता है और ईश्वरीय कार्य में वो मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही शांति स्थापन करते हैं, सुख शांति में दुनिया की स्थापना करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ डालने चाहिए, क्योंकि नहीं तो कहते हैं नेगेटिव न्यूज़ इज न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ इज नो न्यूज़। परंतु हमारी संस्था द्वारा पीस चैनल चलाते हैं और उसमें पॉजिटिव न्यूज ही देते हैं, तो पॉजिटिव संसार स्थापन करने ये मदद कर सकता है और आप योग का योगदान मदद कर सकता है। ओम शांति।
श्रेष्ठ संसार बनाना है तो पॉजिटिव ही रहना होगा, पॉजिटिव न्यूज ही पॉजिटिव बनानी है। हम जो देंगे वही तो संसार स्वतः धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा, और वो हम देखते भी जा रहे हैं। दीदी जी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया 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 कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स हमें दी। और अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमें दीदी जी ने भी गाइडलाइन दी है कि अपना रुझान अपने मन को शांत करने की ओर ले चलें, शांत बनाएं, तो अब बारी है मन की शांति की। मैं आमंत्रण दे रही हूँ हमारे बीच बहन रंजन जी, जो कि वलसाड से पधारी हैं। आप मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और पिछले 45 वर्षों से आप अपनी सेवाएं ज्ञान योग राजयोग की दे रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें उस शांति दाता के पास ले चलें, जहां मन शांत हो जाए और हम अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकें। सबसे अनुरोध है, जहां भी आप बैठे हुए हैं सीधा बैठेंगे, कुछ पलों के लिए मन को शांत करें। रंजन बहन जी,
ओम शांति। विश्वर चैता विश्व परिवर्तक नवयुग निर्माता परमात्मा प्यारे, परमात्मा की सर्व प्यारी संतान, आत्मबंधु, सम्माननीय मंच एवं आप सभी सभा में उपस्थित मीडिया से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, काफी लंबे समय से हम सशक्त मीडिया कैसे बनाए इसके बारे में अलग अलग वक्ताओं से बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं। मीडिया को सशक्त बनाना है और इसलिए बनाना है ताकि विश्व के अंदर शांति और सद्भावना फैले। ये जो हमारे इस बार की मीडिया की थीम है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि सारे विश्व के अंदर चारों तरफ अशांति है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े है, तो सद्भावना कैसे फैले और मीडिया का इसके अंदर क्या रोल है, क्योंकि मीडिया के अंदर भी जो अलग अलग है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और हर एक यही चाहता है कोई भी न्यूज जब मिलती है तो कि सबसे पहले मैं सभी को मैसेज दूं, और इस रीति से जब भी कोई मैसेज उनके पास आते हैं, जब भी कोई खबर उसके पास पहुंचती है तो वो सच्ची है झूठी है उसकी इंक्वायरी किए बिगर ही वो जल्दी पहुंचाने में कई बार नुकसान भी कर देते हैं। और इसलिए हमें इस तरह से जागरूक रहना है कि कोई भी मैसेज की सच्चाई को जाने बिना उसको हमें उसे फैलाए नहीं। दूसरा जो बताया है वैश्विक शांति और सद्भावना, बहुत अच्छे अच्छे विचार सुझाव हमारे वक्ताओं ने दिए हुए हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं, सुना है, अभी उसको हमें अपने अंदर धारण करना है, ग्रहण करना है। और जब तक हमारी खुद की अंदर की महसूसता नहीं है, तब तक हम सुनी हुई बातों को भूल जाते हैं। आज सवेरे के सेशन के अंदर भी आपने स्वयं की पहचान प्राप्त की, और अभी भी हम कितनी बार ये बात सुन चुके हैं कि हम एक आत्मा है और हमें इस संसार नाटक के अंदर पार्ट बजाने के लिए रोल मिला हुआ है। तो आइए अब थोड़े समय के लिए हम इसका अनुभव करेंगे, क्योंकि योग शब्द सुनते ही मनुष्य का मन देह और देह के संबंधों की दुनिया से पार ईश्वर की तरफ जाने का एक भगीरथ प्रयत्न करता है। राजयोग वो है जो इस संसार सागर में तैरने के लिए हमें एक सच्चा रास्ता दिखाता है। ये वही गीता का राजयोग है कि जो हमें सच्ची प्रभु मिलन की अनुभूति कराता है। तो आइए थोड़े समय के लिए आप जहाँ पर भी बैठे हैं अलर्ट होकर के बैठे, जैसे हम किसी से भी मिलने के लिए भी जाते हैं कोई बड़ी व्यक्ति से, तो व्यवस्थित होकर के जाते हैं। ये भी एक प्रभु मिलन की विधि है कि जिसके लिए हम अपने आप को तन से और मन से अलर्ट कर दें, सावधान कर दें, और जैसे यहाँ से आपको विचार मिलते जाए उसी विचारों में आप शिफ्ट होने का प्रयत्न करेंगे। आंखें चाहे खुली हो चाहे बंद हो, लेकिन हम अपने मन को ईश्वर की तरफ एकाग्र करेंगे। मैं एक ज्योति स्वरूप प्रकृति के मध्य विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। इन देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली आंखों द्वारा देखने वाली कानों द्वारा सुनने वाली मुख द्वारा बोलने वाली मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि और संस्कार सहित हूँ। सृष्टि रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर पार्ट बजाने वाली मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से पार सूर्य चांद सितारों से भी पार अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व शांति धाम परम धाम की निवासी हूँ। मन और बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा अपने घर में पहुंच रही हूँ। परम धाम शांति धाम जहां चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश फैला हुआ है, चारों ओर शांति ही शांति है। मैं आत्मा अपने आप को परम धाम घर में महसूस करती हूँ। जो मुझ आत्मा का घर है वही मेरे पिता परमात्मा का भी घर है। बुद्धि नेत्र से अपने सन्मुख परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को निहार रही हूँ। परमात्मा पिता के सानिध्य में मैं आत्मा अपने आप को खुशनसीब अनुभव करती हूँ। शांति के सागर परमात्मा पिता की शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। अपने आप को परमात्मा के सर्व गुणों की किरणों के नीचे सरोवर होते हुए अनुभव करती हूँ। मुझ आत्मा का असली स्वरूप असली गुण स्वधर्म शांति और पवित्रता है। परमात्मा के सानिध्य में वही शांति और पवित्रता प्रेम शक्ति का अनुभव करते हुए अपने अंदर इन्हीं गुणों को लेते हुए पुनः इस देह की दुनिया में इस देह में प्रकृति के मध्य विराजमान होती हूँ। जिन गुणों का अनुभव मैंने किया है इन्हीं गुणों को अब सारे विश्व के अंदर मुझे फैलाना है। अनुभव करें अपनी प्रकृति के द्वारा अपने आसपास के वातावरण के अंदर शांति की किरणें प्रेम की किरणें शक्तियों की किरणें फैल रही है और वातावरण में भी एक शांति प्रेम आनंद सब महसूस कर रहे हैं। यही शांति और सद्भाव खुद के अंदर अनुभव करते हुए विश्व के अंदर भी फैलाना है। अभ्यास करते रहे मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ज्योति स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया रंजन बहन जी। मैं तो ये कहूंगी कि राजयोग से मन में पैदा होते हैं श्रेष्ठ विचार, बदलते हैं जिससे अपने गलत संस्कार। और साथ ही साथ अगर सारांश में कहूं तो ओपन योर इनर आई, राजयोग माना है ओपन योर इनर आई, क्लोज योर फिजिकल लाइ, अपने बाहरी रूप जो हमें हमारे मैं ये मैं वो उसको बंद कीजिए और अपनी आंतरिक शक्ति उस ऊर्जा को जागृत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन बहन। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत अच्छी खबर दे रही हूँ। हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर भूला सिंह जी, जो कि बुलंदशहर से हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और आप राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं। बहनों से अनुरोध है कि आपका अभिनंदन स्वागत करें। साथ साथ कोमल भाई जी, जो कि मधुबन न्यूज चैनल के डायरेक्टर हैं, हेडक्वार्टर के पीआरओ हैं, समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरा अनुरोध आपसे है, आप अपने शब्दों के द्वारा भाई साहब का, भूला सिंह जी का अभिनंदन करें।
ओम शांति। भाई आप लोग इतने सुबह से बैठे ओम शांति में, लगता है योग में सब लोग ऊपर चले गए हैं, तो नीचे आइए ओम शांति। हाँ, अब लग रहा है कि हम डायमंड हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं। हमारे मंच पे आदरणीय संजय द्विवेदी जी हैं, आप सब उनको अच्छे से जानते हैं, मान सिंह परमार जी हैं, शांतनु भाई तो खैर पूरे रचे बसे हैं इसमें, आत्म प्रकाश भाई जी हैं। और मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है, पगड़ी से स्वागत तो हो गया है, शब्दों से स्वागत करने के लिए कहा गया है। तो हमारे बीच में क्योंकि लोकतंत्र के दो स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक राजसत्ता और दूसरा अपने लोकतंत्र मीडिया का जो प्रहरी है ये भी है, और दोनों आज आमने सामने हैं। तो आदरणीय भाई भोला सिंह जी हमारे बीच में हैं, ये बहुत ही मधुर लोकप्रिय मृदुभाषी हैं और 2014 से लगातार सांसद है बुलंदशहर से, और भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा अनुसूचित जाति का उसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अभी यहाँ आए थे राजनीतिज्ञों के सम्मेलन में, ब्रह्मा कुमारी से इनका बहुत लंबे समय से जुड़ा है, और जब भी कभी ब्रह्मा कुमारी के लिए निमंत्रण मिलता है तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि राजनीति को अगर अच्छे तरीके से चलाना है तो अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है, और ये अपने व्यस्त समय में से टाइम निकाल के ये ऊर्जा भरने के लिए यहाँ आ जाते हैं। इनको राजस्थान का प्रभारी भी बनाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां इनके ऊपर, लेकिन इन व्यस्तताओं के बाद भी हम सबके बीच में पहुंचे हैं। मैं इनका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप सब भी तालियां बजा के इनका स्वागत करें। और बाकी आप सभी का बहुत दिल से स्वागत, क्योंकि पत्रकारों को सामान्य तौर पर उनके अंदर जैसे बारिश होती है, वो पूरा ज्ञान भरा रहता है, दूसरों को ज्ञान सुनाने वाले लोग बाबा का ज्ञान सुनने के लिए आए हैं, ये बाबा की विशेष कृपा से ऐसा संभव हो पाया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय शांतनु भाई जी, करुणा भाई जी और जितने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, दादियां दीदियां, उन सभी का स्वागत है कि आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय भाई भोला साहब जी आप आके अपना उद्बोधन दें।
चीज है।
ओम शांति। परमपिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू रोड पर उपस्थित इस वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए सशक्त मीडिया के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अपने बीच में उपस्थित श्री संजय द्विवेदी जी, बहन सरला जी, उपस्थित श्री डॉक्टर मानसिंह परवार जी, वाइस चेयरमैन मीडिया विंग आत्राम प्रकाश जी और उपस्थित हमारे बीच में कोमल भाई जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित देश के कोने कोने से आए और हमारे कोने के साथ पड़ोसी देश से नेपाल से आए सभी निरंतर समाज को अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास में लगे सभी मीडिया के हमारे भाई और बहनें, मैं आप सभी का इस पवित्र भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला। देखिए, मीडिया और पॉलिटिशियन दोनों के जो कार्य क्षेत्र है एक ऐसी श्रेणी है कि ना चाहते हुए भी हम लोगों के ऊपर मानसिक दबाव आ जाता है। कभी कभी आजकल हम देखते हैं कि कोई डिबेट चल रही है और डिबेट चलते चलते किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया हमारे भाई ने किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो उसके फेवरेबल नहीं है तो वो उल्टे सीधे आरोप लगा के या तड़का भड़की वाला माहौल हो जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या में निरंतर कोई शेड्यूल नहीं, अनशेड्यूल्ड सारी लाइफ होती है। जैसी लाइफ आपकी है वैसी लाइफ हमारी है। कब कहां कोई समस्या आ जाए, कब किसकी इमरजेंसी में कॉल आ जाए, आपके लिए कब कहां न्यूज का वो आ जाए, तो भागदौड़ वाली लाइफ होती है। कोई शेड्यूल्ड हम लोगों का नहीं होता। ऐसे जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को मानसिक रूप से शांत रहना चाहिए और मानसिक शांति का अनुभव आप इस स्थान पर आके कर रहे होंगे। मैं लगभग 15 साल से यहां से जुड़ा हुआ हूं और 1.5 साल 2 साल में मेरा कोई भी कार्यक्रम यहां पे होता है तो मैं, जैसा अपने कोमल भाई जी कह रहे थे कि मैं अपने आप को आने से रोक नहीं पाता, तो ये वास्तविकता है कि जो शांति का अनुभूति मुझे यहां आकर होती है, जो मेंटल पीस यहां पे मिलता है, वो नॉर्मली दुनिया में कहीं मुझे नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने इसके लिए समय निकाला है और जिस तरीके से अभी जब मैं आया, हमारी बहन हमको मेडिटेशन के माध्यम से हम किस तरीके से तनाव मुक्त जीवन में रह सकते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए। मैं आपसे अभी कोमल भाई से कह रहा था कि सब वरिष्ठ जन है, हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूंगा, लेकिन इस कार्यक्रम में आप आए। एक तो देखिए, ये स्थान स्पिरिचुअल धार्मिक स्थान है और इसके साथ साथ जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, अगर हमारा माइंड में शांति है, दिमाग में शांति है, तो हमारे विचार भी अच्छे आएंगे, हमें गुस्सा भी कम आएगा। आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह की दिनचर्या हमारी है, कोई बीपी का पेशेंट हो जाता है, कोई हाइपरटेंशन में आ जाता है, किसी को शुगर हो जाती है लगातार सोचते सोचते, तो अगर हम 1 घंटा अपने मेडिटेशन को, जो हमें यहाँ लगातार 3 दिन का कार्यक्रम है मिलेगा, अगर उसको हमने ले लिया और अपने दैनिक जीवन में उसको उतार लिया, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से तो वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा। आजकल हम देखते हैं, कई बार जब कोरोना महामारी आई थी तो घर में रहते रहते लोगों में तनाव आ गया था, तो मेडिटेशन लोग करने लगे थे।
और मेडिटेशन करने से कई लोगों की जो बुरी आदतें उनके अंदर थी वो आदतें छूट गई, अच्छा अपने आप को स्वस्थ लोग हो गए थे। और कई लोग जब सोते सोने से पहले योग निद्रा करते हैं और बहुत शांति के साथ में अच्छी नींद आती है, कभी कभी मैं भी कर लेता हूं। तो निश्चित ही आप लोगों को अपने इस तनाव मुक्त जीवन से मुक्ति के लिए और अपने विचारों को अच्छा और पॉजिटिव, जिस तरीके का टाइटल इसका है कि वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए सशक्त मीडिया, आप कलम की ताकत आपके अंदर है, लेकिन सशक्त का होने का मतलब ये नहीं कि जो हमारी कलम से हो गया वो ठीक, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे मीडिया के साथ ही सशक्त होंगे, स्ट्रांगली होंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो जो शांति और सद्भाव का उद्देश्य अपने ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों का है, उसमें हमें सफलता मिलेगी, अपने दैनिक जीवन में हमें शांति का अनुभव होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप एक वो कहते हैं कि तीसरा नेत्र है, जो कहीं नहीं दिखता वो मीडिया पर दिखता है और लोग भरोसा भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गांव में बैठा हुआ न्यूज चैनल पे कुछ खबर देख ले तो यही कहेगा मीडिया में तो ये चल रहा है, तो यही हो रहा होगा। मीडिया के माध्यम से लोगों को चीजें पता लगती हैं, नीचे तक चीजें पहुंचती हैं। पहले प्रिंट मीडिया गांव में न्यूज़पेपर जाता था, क्योंकि मैं बुलंदशहर से हूं और मेरा एरिया ज्यादातर गांव का एरिया है, अभी भी 90% आबादी गांव में ही रहती है मेरे क्षेत्र में। गांव में न्यूज़पेपर जाता था, उसके माध्यम से लोगों को पता लगता था, लेकिन आज तुरंत जैसे ही कोई खबर आती है लोग लाइव देख लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा माध्यम लोगों में देश और दुनिया की खबरों को पहुंचाने का, लेटेस्ट अपडेट उनको देने का, अवेयर करने का, जानकारी देने का, और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि आजकल लोग बहुत एक्टिव हो गए, पॉलिटिकली भी और सोशली भी। तो ये जो माध्यम आप बने हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको पुनः शुभकामना देता हूं और आभार करता हूं अपने इस मंचासीन हमारे भाई और बहनों का, अपने ब्रह्मा कुमारी के सभी टीम का, कि पीछे चल रहा है पॉलिटिशियन कि किस तरीके से अच्छा विचारों के साथ में, अच्छे उद्देश्य के साथ में राष्ट्र निर्माण में पॉलिटिशियन की भूमिका होनी चाहिए, और इधर चल रहा है मीडिया का कि मीडिया से किस तरीके से सशक्त राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका होनी चाहिए, और दोनों ही स्ट्रेस वाले श्रेणी है, उनका स्ट्रेस कैसे खत्म हो, कैसे पीस उनके उसमें आए, ये प्रोफेशन के साथ साथ पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट अपनी डालेगा। ऐसा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, इसके लिए मैं पूरी ब्रह्मा कुमारी की टीम का, सभी भाइयों का, बहनों का आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वास्तव में इसकी आवश्यकता थी जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुंदर अभिव्यक्ति राजयोग की भी की कि राजयोग के द्वारा कैसे स्वास्थ्य मिलता है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी राजयोग, जिसका नाम रोगों से मुक्ति मिले, तन मन को आराम। और हम अब आगे बढ़ते हुए धन्यवाद करते हुए भोला सिंह जी का मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय निर्मला दीदी से, भाई सबको ईश्वरीय सौगात प्रदान करेंगे। डॉक्टर भोला सिंह जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपका सम्मान स्वयं दीदी जी कर रही हैं और ईश्वरीय सौगात आपको प्रदान कर रहे हैं। और अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, कुछ समय आप हमारे साथ और बने रहेंगे, साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी जानकारी दूंगी कि मंच को आपको बाकी सबको ईश्वरीय सौगात हम कुछ देर बाद देंगे। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ हमारे आदरणीय भ्राता शांतनु जी को कि हमारे सामने वोट ऑफ थैंक्स रखेंगे, जो कि राष्ट्रीय संयोजक मीडिया विंग, आप ब्रह्मा कुमारी इसकी मीडिया विंग के कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, संपादक हैं www.mediawingorganization, मीडिया ट्रेनर भी हैं, मूल्य निष्ठ पत्रकारिता के। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना धन्यवाद प्रस्ताव हमारे बीच रखें, आदरणीय भ्राता शांतनु जी।
परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनके प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ अतिथिगण, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर भोला सिंह भाई जी, जो बुलंदशहर एमपी से आए हैं, लोकसभा एमपी, राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी, आपका आप कई बार आ चुके हैं, ब्रह्मा कुमारी से भी आपका अच्छे संपर्क है, मूल्य निष्ठता को बढ़ाने के लिए आप काफी प्रयास कर रहे हैं, आपका हम तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग के तरफ से स्वागत करते हैं। आप हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के साथ काफी साथ से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, माउंट आबू आप जो घूमने जाएंगे तब आप वहां भी दर्शन के लिए जाएंगे। आप साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया के भी ब्रह्मा कुमारी केंद्रों के भी डायरेक्टर हैं, पैसिफिक कंट्रीज के भी डायरेक्टर हैं, एशिया पैसिफिक बोलते हैं उसको, और साथ में जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारी, आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि माउंट आबू में वर्तमान समय 500 डॉक्टरों का कार्यक्रम अपने कैंपस में चल रहा है, जैसे यहाँ पर 6 प्रोग्राम चल रहा है, तो पहली बार ऐसे हुआ कि मीडिया सम्मेलन के टाइम में कोई दूसरे को बुलाया नहीं जाता था, ताकि शांति से सब प्रोग्राम रहने के लिए भी सब व्यवस्था हो पाती थी, लेकिन इस बारी कोरोना के बाद इस बारी बहुत सारे प्रोग्राम रख दिया गया, यहाँ पे महिलाओं का सम्मेलन 6000 महिलाएं भी आए हैं, आप 1500 से अधिक मीडिया कर्मी भाई बहन इंडिया नेपाल से आए हैं, अपने जो पीछे जो आनंद सरोवर कैंपस है ब्रह्मा कुमारी के, उसके अंदर करीब 1000 पॉलिटिशियंस आए हैं, जिसमें हमारे भोला सिंह भाई साहब आए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, तो मनमोहिनी कैंपस में भी हमारे इन हाउस ट्रेनिंग 2 ट्रेनिंग चल रहा है, जो जहां पर सभी रुके भी हैं, और साथ में अपने मानसरोवर एक नया कैंपस है, वहां भी एक एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के एक ट्रेनिंग मीटिंग चल रहा है, अपने ब्रह्मा कुमारी के इन हाउस ट्रेनिंग माउंट आबू में भी चल रहा है। इस बारी बहुत कार्यक्रम चलने के कारण थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन आप सबको तहे दिल से हम इसीलिए करेंगे कि कैसे भी करके आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और हमारे बीच में जो भी हमारे जैसे मीडिया के 2 दिग्गज पधारे हैं, डॉक्टर मानसिंह परमार, वो तो बहुत पुराने हमारे मीडिया गुरु हैं, साथ में हमारे प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और वर्तमान समय माखनलाल चतुर्वेदी में प्रोफेसर हैं, वो भी पहले भी उसमें वाइस चांसलर रह चुके हैं, आप हमारे ब्रह्मा कुमारी के डिवाइन मीडिया एम्बेसडर हैं, आप दोनों भाई इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर मानसिंह परमार काफी सालों से हमारे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, क्योंकि डिविनिटी को फैलाना, दिव्यता को फैलाना, स्पिरिचुअलिटी को फैलाना, क्योंकि सारे समाज के जितने भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसका एक ही निदान है कि आध्यात्मिकता, जो कि धर्म से ऊपर है, जिसमें सच्चाई, विज्ञान भी है, विज्ञान की बातें भी है और सत्य है, क्योंकि मीडिया सत्य को पसंद करता है, इसीलिए हम दोनों हमारे दिग्गज परमार साहब और द्विवेदी साहब का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। हमारे बीच में करुणा भाई, आत्म प्रकाश भाई, हमारे जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, सरला बहन नेशनल कोऑर्डिनेटर, रंजन बहन और हमारे चंद्रकला दीदी, बहुत अच्छा मंच संचालन भी किए हैं, और हमारे कल्चरल ग्रुप साथ में हम एक नाम भूल गए, निर्भय भाई जी, जिनका आपने 12 मिनट तक बहुत अच्छा संदेश सुना कि मीडिया क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत अच्छा। आप सब यहाँ आए हैं सिर्फ मीडिया की बातें करने नहीं आए, लेकिन अपने को सशक्त बनाने के लिए, अपने को ज्ञान योग धारणा सेवा के द्वारा सशक्त बनाने के लिए आए, क्योंकि मीडिया का एक ही लक्ष्य है सेवा सेवा सेवा, वो भी निस्वार्थ सेवा, तब है मीडिया को जगह। महात्मा गांधी जी कहते थे मीडिया अगर सेवा नहीं कर रहा है, निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहा, वो मीडिया नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम सब, आप सबको यहाँ मन की शांति, तन की शांति के लिए भी और मन को प्रफुल्ल रहने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए यहाँ 3 दिन के लिए बुलाते हैं। इसीलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में 4 लाइन सुना करके आप मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। किस कदर शुक्रिया अदा करूँ, किस कदर शुक्रिया अदा करूँ, उस खुदा का अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत न होती जो आप जैसे मीडिया कर्मी भाई बहने हमें नहीं मिलते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सेवा आप कर रहे हैं वो सारे संसार के लिए एक मिसाल है, और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी टॉपिक्स है हम सब भाई बहनों के लिए ये, और उसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। माउंट आबू भ्रमण तो परसों रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ सारे सेशन से आप अटेंड करेंगे तो ये जिंदगी भी खूबसूरत बन जाएगी, हमें भी खुशी मिलेगी बहुत। थैंक यू, ओम शांति।
इतना सुंदर तरीके से धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए आपका भी धन्यवाद, और मैं आप सबकी तरफ से शांतनु भाई जी को कहना चाहती हूँ, हम यूं ही सदा आपस में मिलते रहे, हम यूं ही सदा आपस में मिलते रहे, उमंगों के फूल जीवन में खिलते रहे, इन फूलों को लगाने में बने हम खुद ही माली, इन फूलों को लगाने में बने हम खुद ही माली, विश्व वृक्ष पर शांति की चिड़िया यूं ही चहकती रहे चहकती रहे। और अब मैं अनुरोध करने जा रही हूँ बहनों से कि वो आगे आए और हमारे मनचासीन हमारे विद्वानों का यूं कहें सौगात और प्रभु प्रसाद दे करके अभिनंदन कराएं। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी से अनुरोध है वो एक एक हमारे अनुभवी विद्वानों का सम्मान करेंगे, सौगात प्रदान करेंगे। और आप सबसे अनुरोध है 5 मिनट और आप हमारे साथ बने रहें, और तब तक मैं आपको कुछ जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहूंगी। भोजन के पश्चात ध्यान देंगे अब आप लोग, भोजन के पश्चात प्रेस रूम में आप जाकर स्लिप भरेंगे ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके। सर्टिफिकेट एवं प्रेस रिलीज एवं फोटोज आपको वहीं से मिलेंगी, पर आपको पहले स्लिप भरनी होगी। दूसरी बात, 4 बजे प्लेनरी सेशन है, यही रहेगा। 6:30 बजे इनसाइट सेशन रहेगा, और 9:45 बजे कल्चरल सेशन कहूँ, कल्चरल प्रोग्राम कहूँ, सांस्कृतिक प्रोग्राम रहेगा। हमारे जो यहाँ के स्पीकर्स हैं, चाहूंगी आपका भी सम्मान हो, और आत्म प्रकाश भाई जी आपको भी ईश्वरीय सौगात बहने दे रही हैं, इनके लिए भी हम ताली बजाएंगे। शांतनु भाई को भी सौगात मिल रही है, थैंक यू। और अब हम प्रभु स्मृति में बैठेंगे। आप जहां भी हैं थोड़ा सा स्थिर होकर के बैठें। शुरुआत भी हमने प्रभु स्मृति से की, कार्यक्रम की समाप्ति भी हम प्रभु स्मृति से करेंगे।
Yeah।
शांति ओम शांति ओम शांति।